देवी माताओं बहनों और भाइयों, कल संध्या समय की बैठक में सबसे पहला पुरुषार्थ अपने लोगों को यह मिला कि हमें अपने जीवन में से कामना पूर्ति के सुख का लालच छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात है, कामनाओं के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति ना शरीरों के काम आता है, ना समाज के काम आता है, ना अपने काम आता है, ना परमात्मा के प्रेम का पात्र बन सकता है। तीनों ही दृष्टियों से जीवन में घोर असफलता ही असफलता है। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को अपने को सार्थक, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ी आवश्यक बात है कि अपनी ओर देखना आरंभ करें। पहली बात ये हो गई। अब इसके बाद दूसरा कदम वो ऐसा है कि जब किसी प्रकार से हमारे भीतर शरीर तथा संसार के संयोग जनित सुख भोगने की कामना नहीं रहेगी अथवा भोगे हुए सुखों के प्रभाव से वासनाएं नहीं रहेंगी, तो उसके बाद अपना जीवन इतना फ्री होगा, इतना हल्का होगा, इतना निश्चिंत होगा कि हम ठीक प्रकार से शरीर की, परिवार की, समाज की, बृहद जनसमूह की सेवा के योग्य बनेंगे। जो कुछ भी चाहता है अपने लिए, उसके द्वारा सेवा नहीं बनती है। सेवा शब्द का प्रयोग हम लोग खूब करते हैं। जहाँ कहीं सामूहिक कार्य में हाथ डाला तो भाई सेवा कार्य में लगे हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन जो उसके बदले में कुछ भी अपने लिए चाहता है, तो उसके द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है वो सेवा नहीं हो रही है। दूसरी बहुत सी बातें हो जाती हैं, समाज में स्थान भी मिल जाता है, उसके बदले में बहुत प्रकार की सुविधाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन जिसके बदले में कुछ भी पाने की चाल भीतर रह गई है, उसका नाम सेवा नहीं है। और जिसने अपने भीतर से निज संकल्पों की पूर्ति का प्रलोभन छोड़ दिया, उसके द्वारा सेवा बनती है। क्योंकि इस व्यक्तित्व में भौतिक तत्व भी हैं और अलौकिक तत्व भी हैं, शरीर की नश्वरता को अपने द्वारा जानते हुए भी उसके प्रति आसक्ति हम नहीं तोड़ते हैं अथवा नहीं तोड़ पाते हैं, उसका एक खास कारण यह है कि शरीर की सहायता से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का सुख तो लिया, और उसका प्रभाव जो है वो राग के रूप में अपने भीतर अंकित हो गया। तो राग शब्द का अर्थ ही होता है कि बुराई को बुराई जान करके भी उसका त्याग न किया जाए। तो शरीर के प्रति आसक्ति रखना अच्छाई है कि बुराई है? बुराई को बुराई करके हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, फिर भी आसक्ति तोड़ना अभी तक अगर संभव नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? बीमारी लग गई है तो बीमारी का विश्लेषण करना जरूरी नहीं है, आरोग्यता का उपाय ढूंढना जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने सलाह दी, कितने भी जन्मों का बना हुआ राग क्यों न हो, अगर इस समय वर्तमान में तुम्हें सूझ गया कि मुझे बीज राग होना ही है, राग रहित जीवन में ही अलौकिकता की अभिव्यक्ति होती है, इस उद्देश्य को सामने रखकर अगर तुमने अपने को साधक स्वीकार किया तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही सहज उपाय है। निजी रूप से व्यक्तिगत सुख लेना बंद करके शरीरों का सदुपयोग सेवा में आरंभ कर दो। जो जो साधक जन पर पीड़ा से पीड़ित होकर दुखी जनों की सेवा में हाथ बटाने लगते हैं, उनको अपने प्रलोभनों पर विजय पाने में कठिनाई नहीं होती है। अपने दुख के डर से अपने सुख को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हमने किए और उसमें बड़ा उत्साह भी मालूम होता है, बड़ा इंटरेस्ट भी मालूम होता है, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं हुआ कि हम आए हुए सुख को बचा करके रख सकें। वो तो किसी मंगलकारी ध्यान से रखा गया है, अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है, वो लाभ तो हम लोगों को नहीं हुआ। लेकिन वीतराग होने का उद्देश्य लेकर के नया कोई राग तो पैदा करेंगे ही नहीं, नए सुख भोग की कामना रखेंगे ही नहीं, और पुराने भोगे हुए सुखों के प्रभाव से जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उनके नाश के लिए दुखी जनों की निकटवर्ती जन समाज की क्रियात्मक सेवा एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल उपाय है, जो कि सभी भाई बहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा औषधालय चलाएंगे तब ये काम होगा, कि बड़ा विद्यालय खोलेंगे, कि बड़ा धर्मशाला बनाएंगे, कि बहुत प्रचार का काम करेंगे तब ये बात बनेगी। ऐसा नहीं है। मानव जीवन का मंगलमय विधान इतना मंगलकारी है, उसमें इतना साम्य है कि थोड़ी से थोड़ी सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी, अल्प से अल्प शक्ति जिसके पास बच गई है, वो भी यदि इस उद्देश्य से सेवा कार्य में हाथ डालेगा तो बाहर से देखने में बहुत मामूली मामूली काम दिखाई देगा, लेकिन उसके परिणाम से उसको वही फल मिलेगा जो बड़ा से बड़ा सेवा कार्य करने वाले को मिलता हो। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। बड़े बड़े महापुरुष जगत में हुए हैं जिन्होंने बहुत छोटी छोटी सेवा कार्य किया और महान फल पाया। शबरी जी की कथा आप लोगों को मालूम है, सेवा से उनका चित्त शुद्ध हो गया था। क्या सेवा की थी उन्होंने, तो सड़क को साफ किया था, उन पर पत्थर हटाया था, वन की सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर रात्रि में गठरी बांधकर ऋषि मुनियों के दरवाजे कुटिया के बाहर रखाते थे। इसलिए ऋषि मुनि जब सवेरे बाहर निकलेंगे हवन करने के लिए उनको लकड़ी चाहिए तो लकड़ी उनके पास हाजिर हुए। तो इतनी छोटी छोटी सेवा उन्होंने की और इतने से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया था कि जब उनके गुरु ने एक बात बताई तो उस बात का उन पर बड़ा ही सजीव प्रभाव हो गया। गुरु ने उनको बता दिया कि शबरी जी आप इसी आश्रम में रहिएगा, भगवान जब बनने आएंगे तो यहाँ आएंगे और इसी आश्रम में आपको दर्शन देंगे। तो गुरु की वाणी में इतनी गहरी आस्था, ऐसा जोरदार प्रभाव हुआ कि उसी दिन से उनके भीतर एक बड़ी लगन लग गई। प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आ रहे होंगे। तो उस लगन ने उनको परमात्मा से मिला दिया पहले, और साकार रूप में वन विचरण करते हुए महाराज पहुंचे उनके पास पीछे। ऐसा होता है, ये तो अपनी प्राचीन कथा है। आज भी आधुनिक युग में भी ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में बहुत छोटी छोटी सेवा का अवसर मिला और उसी को उन्होंने इतनी पवित्रता इतनी लगन से किया कि उसी के आधार पर शरीर की आसक्ति टूट गई, टूट गई बिल्कुल। और इसका एक उदाहरण मुझे मिला था। मेरे साथ महाविद्यालय में पढ़ाने वाली एक महिला बहुत दुख में पड़ गई थी। स्वामी जी महाराज के साथ मैं पटना में पहुंची थी, तो वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो महिला अस्पताल में है। तो महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी उनसे मिलने जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भयंकर दुख उन पर आया है कि जाने का मेरा साहस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगी और वे अधीर होकर के रोना शुरू करेंगी, तो कोई सहारा बचा ही नहीं कि जिसके आधार पर मैं उनको धीरज दूंगी, तो जाना जरूरी भी है, जाए बिना रहा भी नहीं जाता, और उनके सामने खड़े होने का साहस भी नहीं होता था। क्या कहूंगी उनको, कैसे समझाऊंगी उनको। तो स्वामी जी महाराज को मालूम था हमारी स्टाफ में से थी, और जब महाराज जी रांची जाते थे तो वो लोग सब मिलने आते थे स्वामी जी से, तो महाराज जी उनको जानते थे। तो कहने लगे, देखिए जी, डरने घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर के देखोगी तो उनको उतना दुखी नहीं पाओगी जितनी तुम कल्पना करती हो। कहते महाराज क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में परिवार की सेवा की है, सुख नहीं लिया है। ये मैं साधक की बात नहीं कर रही हूँ, घरवाली की बात कर रही हूँ। अविवाहित महिला थी, बंगला साहित्य पढ़ाने के लिए वो आचार्य थी हमारे साथ महाविद्यालय में, और सब प्रकार से उन्होंने परिवार की सेवा की थी, और अपने जीवन में कोई सुख की बात तो थी ही नहीं। तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ अच्छी तरह से उनसे मिल करके आओ, और तुम उनको उतना दुखी नहीं पाओगी। तो मेरा कुछ साहस हुआ तो मैं गई, जाकर के उनसे मिली, तो बस मुझे देख करके थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों में थोड़ा जल आया, दो चार बूंद आंसू गिरे, और उसके बाद बिल्कुल शांत होकर के और मुझसे अपना हाल भी बता दिया उन्होंने, और बहुत ही व्यवहारिक बातें की। टाइप करवा के रखा हुआ था दरखास्त यूनिवर्सिटी को देने के लिए, मेडिकल लीव लेने के लिए, और क्या क्या करने के लिए, तो सब कागज वगैरह उन्होंने अपने साथ के लोगों से मंगवा लिया, और कहा कि देखी जी आ गई हैं वीमेंस कॉलेज से, तो लाओ सब ये इनको दे दो, इनके हाथ से ये जाके दफ्तर में भी दे देंगी, यूनिवर्सिटी को भी भेज देंगी, और इनको ऐसा कर दीजिएगा, और उनको ऐसा कर दीजिएगा, और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को ये समझा दीजिएगा। सब प्रैक्टिकल बातें उन्होंने की, और बहुत शांतिपूर्वक मुझे विदा कर दिया। मैं आ गई वहाँ से लौट के, महाराज जी के पास आई तो दूर से पुकार से पूछा महाराज जी ने, कहिए जनाब। तो हमने कहा कि महाराज आपका कहना ठीक निकला, तो ऐसे हाथ बढ़ाया कि हाथ मिलाइए, देखिए ये जीवन का सत्य है कि जो सेवा करता है वह मोह के बंधन से मुक्त होता है। तो एक परिवार वाले व्यक्ति की बात मैं कर रही हूँ, न गृह त्यागी की बात कर रही हूँ, न आश्रम वासी की बात कर रही हूँ, न भगवत भक्त की चर्चा कर रही हूँ। वो महिला अपने को इतना रिस्पेक्ट और इतना रैशनल मानती थी कि जब जब मैं उनको सूचना दूँ कि नगर में स्वामी जी महाराज आए हैं, सत्संग हो रहा है, चलिएगा। उम्र में मुझसे बड़ी थी, मैं दीदी उनको कहती थी, शिवा दीदी चलिएगा, स्वामी जी महाराज आए हैं, सत्संग हो रहा है। तो बहुत बार कहें कि क्या कहें देवी जी, वो तो वैदिक युग था जबकि सब लोगों को बाहर से रहने सहने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। तब लोग ऋषि मुनि और दूसरे विद्वान लोग बैठ करके दार्शनिक चर्चा किया करते थे, आज का युग है दार्शनिक चर्चा सुनने का, ऐसा वो अपने को मानती थी। उनको लगता था कि पेट भरने से आदमी दार्शनिक चर्चा करता है। उनको हमको ऐसा लगता था कि जब दुनिया की ओर से निराशा होती है तो आदमी की जगत ज्यादा चेतना करती है। तो मैं तो उल्टी प्रकार से सोचती थी, उनका सोचना उल्टा था। ऐसी महिला की बात मैं बता रही हूँ कि उन्होंने सुख लिया नहीं और सेवा की, उसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने शरीर की आसक्ति से भी मुक्त थी, मृत्यु का भी भय उनको नहीं था, सारे शरीर की जगह जगह की सब हड्डियां टूट गई थी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ना मरने का डर था और ना जो उनके निकट संबंधी उस एक्सीडेंट में चले गए थे उनके लिए रोया गया उन्होंने, ये सब कुछ नहीं, पूरा कर्तव्य निष्ठा हमने देखा उनके जीवन में। और महाराज जी की इस वाणी को मैंने सत्य पाया कि शरीर की शक्ति को तोड़ना चाहते हैं हम लोग, शरीर के राग से मुक्त होना चाहते हैं, शांति संपादन के द्वारा और शरीरी जीवन में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो सुखबोध की वासना को भीतर से निकालकर सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए। कार्य क्षमता जब तक शरीरों में बची हुई है तब तक कुछ न कुछ सेवा कार्य के द्वारा उसका सदुपयोग करना आवश्यक है और ये बिल्कुल मंगलकारी विधायक की योजना है मनुष्य के लिए कि जब उसके भीतर करने का राग नहीं रहता तो उसके सामने कर्तव्य भी नहीं आता है। ये भी एक जरूरी बात है। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो लोग यूँ सोचते हैं कि क्या बताएं, घर वाली काम में हम इतने फंसे हैं, इतने प्रकार का काम मेरे सामने है कि सत्संग में जाने के लिए कभी फुर्सती ही नहीं मिलती है। तो सत्संग में जा सकेंगे अथवा जाने की आवश्यकता आपको मालूम होती है कि बैठकर सुनना आपके लिए आवश्यक है तो सच मानिए जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर जो करना चाहिए वो कर डालेंगे तो परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। मेरे सिर पर काम का भार लदा हुआ क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हमने कर्तव्य निष्ठा से काम पूरा नहीं किया, थोड़ा सा कुछ किया और उसके बदले में ज्यादा लेने की इच्छा रखकर किया, इसलिए न काम पूरा हुआ न करने का राग मिटा। जो भी जिस जनसमूह के भीतर रहे उनकी मदद से अपने लिए किसी न किसी प्रकार से सुख संपादन की चेष्टा में लगे रहे, निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा में शक्ति और समय खर्च नहीं किया, इसलिए करने का राग नहीं मिटा, इसलिए अपने सामने दायित्व आ गया। तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया है, महाराज जी की वाणी को सुना मैंने और जीवन का अध्ययन किया तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया है कि जब तक हम जी चुराते रहेंगे तब तक मेरे सामने से ये प्रवृत्ति का जाल कभी कटेगा नहीं। और जिस किसी ने छोटी से छोटी सेवा प्रवृत्ति में भी पूरी शक्ति लगाकर निष्प्रियता पूर्वक लगन से प्रेम पूर्वक काम करके अपने को भीतराज बना लिया, उसके सामने से वह परिस्थिति हट जाती है। तो मुझे अभी तक भी बोलने की परिस्थिति मिल रही है, अर्थात सत्संग प्रेमी भाई बहनों के बीच में सत्य की चर्चा करने की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है और बहुत ही आवश्यकता मालूम होती है। बाहर से आने वाले भाई बंधु और मानव सेवा संघ की विभिन्न शाखाओं के सत्संगी साधक भाई बहन सब मेरे पास पत्र लिखते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, बड़ा आदर सम्मान भी मालूम होता है और सब लोग मिल करके प्रबंध भी करते रहते हैं और इन सारी अनुकूलताओं को देख करके भीतर से ऐसा जी होता है कि मैं बोल सकती हूँ और सुनने वाले सत्संगी भाई बहन बुलाते हैं तो जाना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। और जब इन सब बातों से प्रवृत्ति में थकान मालूम होती है और जब एकांत में अकेले बैठने की आवश्यकता मालूम होती है तब लगता है कि बुलाहट तो आती ही रहेगी। भगवत कृपा से, संत कृपा से इस विचारधारा का प्रसार अपने आप से भी खूब हो रहा है। तो मैं अकेले में बैठ करके कभी पूछती हूँ अपने से कि जो कुछ चर्चा मैं सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सुना रही हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो सुख भोग की वासना को छोड़ करके सेवा करने से राग निवृत्ति होती है और राग निवृत्ति की शांति में विचार का उदय होता है, विचारों के उदय होने से सत असत के विभाजन की सामर्थ्य आती है, तो शरीरों से तादात्म टूट जाने से और शरीरी जीवन का आनंदमय अनुभव मिलता है कि सब कुछ भगवत समर्पित करके उनकी शरणागति को लेकर उनकी कृपामयी गोद में विश्राम लेने से वे उनकी कृपा जो है वो अपने को प्रेम का पात्र बनाकर उनके साथ रस का आदान प्रदान कराती है। ये सब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ तो अकेले में बैठ करके अपने से पूछती हूँ कि सुनाती ही रहूंगी कि जितना आज तक पता चल गया उतना तो तुमने सुना लिया, अब जो बाकी है उसको पता चलाने के लिए शांति संपादन भी तो चाहिए जी, कि करते ही रहो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो जब जब भीतर से बहुत जोर से इस बात की आवश्यकता मालूम होती है कि अब मुझे कुछ घंटे चुप रहना चाहिए, तो प्रभु का मंगल में विधान इतना उदार है कि जब मैं आवश्यकता अनुभव करती हूँ तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीना ऐसा अवसर मुझे मिल जाता है कि कुछ घंटे मैं चुपचाप रहूं, और फिर उसके बाद कार्यक्रम का कांटा तक जाता है। तो बार बार मैं इस बात को अनुभव कर रही हूँ अब इस अवसर पर कि सचमुच भीतर से बोलने का राग खत्म हो गया होता तो बोलने वाली परिस्थिति भी बदल गई होती। किसी सेवा प्रवृत्ति को सांगोपांग पूरा किया गया इसका प्रमाण ये है कि अपने भीतर उस प्रवृत्ति में लगने की इच्छा खत्म हो गई, अपने लिए उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, ये उसका प्रमाण है। आज तक हम भाई बहन जो इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और शांत होने का अवसर निकालते हैं और कुछ काल के लिए शांत रहते हैं, तो उसके भीतर कुछ देर शांत रहने के बाद कुछ प्रवृत्ति का स्फुरण होने लगता है, अब यहाँ जाना है, अब उनसे मिलना है, अब ऐसा करना है, अब ये काम पूरा करना है, तो प्रवृत्ति का स्फुरण जो भीतर से होने लगता है और काम करने के नए नए संकल्प आने लगते हैं, तो ये किस बात को दिखा रहे हैं? तो ये इस बात को दिखा रहे हैं कि अब तक जो मैंने अपने को सेवा प्रवृत्ति में लगा करके कुछ किया तो उसका मतलब है कि उसके द्वारा राग निवृत्ति नहीं हुई। अगर राग मिट गया होता तो मेरी तरफ से प्रवृत्ति का स्फुरण नहीं होता। तो तब बीच राग संत जन कैसा करते हैं, संत समागम में आपने पढ़ा होगा, महाराज जी ने 5-7 वाक्य लिखे हैं, सुनने वालों की प्रसन्नता के लिए बोलो, खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए भोजन ग्रहण करो, बुलाने वाले की प्रसन्नता के लिए जाओ। तो वीतराग पुरुषों की ये रीति होती है, खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाओ, ऐसा नहीं कि मेरी रुचि के अनुसार बना करके सही भोजन मेरे सामने नहीं आया तो खिलाने वाले को डांटो, ये नहीं। ऐसा नहीं कि आपको सत्य की चर्चा करने में आनंद आता है, अच्छी बात है, लेकिन किसी समय मुझको मेरी गरीबी का दर्शन कराने के लिए मेरे प्यारे ने ऐसी लीला की कि एक भी श्रोता नहीं रहा। तो जब कोई सुनने के लिए नहीं रहा तो मेरे भीतर से ऐसा लगता है कि हाय कोई सुनने वाला है ही नहीं है, किसको सुनाऊं। तो इसका अर्थ क्या है कि अब तक जो मैंने सुनाने का काम किया उसके सुख का भोग किया, बोलने का राग मिटा नहीं तो श्रोता के पराधीन होकर वक्ता रह गया। जब श्रोता कोई सुनने के लिए नहीं मिला कि श्रोता की ओर से बहुत ही अच्छा भाव नहीं दिखाई दिया तो अपने को जीवन में मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपना सुख जो है वो दूसरे पर आश्रित हो गया। तो वक्ता होने का सुख अगर वक्ता ले रहा है तो उसका राग नहीं मिटेगा, और अगर बोलने से भी अधिक निष्ठा न बोलने में हो गया, काम करने से भी अधिक सजीवता मूक सत्संग में हो गया, तो इसका अर्थ है कि मैंने सही काम किया और करने का राग नहीं। तो पहला कदम निकला था अपने भीतर से कामना पूर्ति के सुख का प्रलोभन छोड़ो। अब आप कहीं चले जाइए, कहीं कहीं ध्यान का क्लास हो रहा है, कहीं योग का क्लास हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा वचन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत प्रकार की क्रियात्मक साधना प्रणालियों का कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग प्रकार के भाई बहन सब अलग अलग रुचि रखने वाले अलग अलग ढंग के प्रणालियों में लगे हुए हैं। सभी जगह आपको बड़ा बड़ा जन समूह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप मानव हैं और आपने इस सत्य को पकड़ लिया है कि अपने भीतर से कामना पूर्ति के सुख का लालच निकाल दिया है, किसी भी प्रकार से उसको प्रश्रय आप नहीं देते हैं, तो उस हालत में आप जिस किसी साधना प्रणाली में लग जाएंगे वही सजीव हो जाएगा, वही सिद्ध हो जाएगा। जो करेंगे आप उसी में आपकी निष्ठा बन जाएगी। और अगर अपनी ही कामना पूरी करनी है, और कामना शब्द तो जरा जरा छोटा है, इज्जत घटाने वाला है, तो थोड़ा अच्छा शब्द ले लो। अपना ही संकल्प पूरा करना आपको अच्छा लगता है, संकल्प शब्द का उच्चारण करने में उतना उतनी छोटाई नहीं लगती है, कामना करने से थोड़ा अच्छा शब्द है, सभ्य है। तो अगर अपना ही संकल्प पूरा करना है तो दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी भी सिद्ध महापुरुष के पास जाकर के बैठ जाओ, किसकी भी कृपा दृष्टि की भिक्षा मांगते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर अपने संकल्प की पूर्ति आपको अभीष्ट है तो कोई साधन पद्धति आपका साथ नहीं दे सकती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक गुरु की तो कौन कहे, सारे संसार के सब गुरुओं को इकट्ठा कर लो, जो तुम्हें करना है उसको तुम पूरा नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। खास बात है, तो जो जो करना है वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, हर संप्रदाय का अलग अलग हो सकता है, हर मत विचार मजहब का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो त्याज्य है, जिसका त्याग करना है, जो नहीं करना चाहिए, उसमें मानव मात्र एक समान है। संकल्प को अपने निजी संकल्प को पूरे करने के सुख का लालच जीवन में नहीं रखना चाहिए, अपने सुख के संकल्प का त्याग करना चाहिए। तो अपना संकल्प हम नहीं रखेंगे इस बात को मानने के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पद्धति में तो संकल्प का त्याग जरूरी बताया जाता है और दूसरे किस्म की कोई साधन पद्धति है उसमें ये कहा जाए कि हाँ ठीक है ठीक है, संकल्पों को भी रखो, उनकी पूर्ति का सुख भी लो और हम तुमको मुक्ति दिला देंगे, भक्ति दिला देंगे। तो ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो मानव सेवा संघ कोई कोई नया पंथ नहीं है, कोई नया मत मजहब नहीं है, जो सनातन सत्य है, जो मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक दार्शनिक और आस्तिकता का सत्य है, वही आपके सामने मौलिक रूप में प्रस्तुत कर देता है। भ्रम में मत रहना, संकल्पों को छोड़ना, कामना पूर्ति के सुख दुख का प्रभाव आपने खूब देख लिया है, फिर भी थोड़ी गुंजाइश है और कुछ दिन और आप कामनाओं को रखना चाहते ही हैं, तो भले रखो, लेकिन शांति मुक्ति भक्ति जैसे अविनाशी अनमोल तत्वों का दर्शन तो नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते कि मैं थोड़े कहता हूँ तुमसे कि बाबा जी बन जाओ, मैं क्यों कहूँ, बाबा जी बन जाओ मतलब संन्यास ले लो, वेश धारण कर लो, विशेष वो बात नहीं है, वीतराग बनने की बात है। तो महाराज कहते कि मैं थोड़ी कहता हूँ कि बाबा जी बन जाओ, मैं क्यों कहूँ भैया, अगर बाबा जी बने बिना तुमको शांति मिल जाए तो मत बनो, लेकिन तुम ही आकर के सुनाते रहते हो, मेरे कान भरते रहते हो, महाराज चैन नहीं मिलती, महाराज शांति नहीं मिलती, कुछ ऐसा उपाय करा दीजिए, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। जब तुम ही बेचैन होकर के आकर के करते हो तो मैं उपाय बता देता हूँ। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो ये पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, और इससे अपने को बचा करके कि कामनाओं को भी न छोड़ना पड़े और वस्तुओं का लोभ भी न छोड़ना पड़े और धन का संग्रह भी न छोड़ना पड़े, और ऐसा कोई साधु संत महात्मा मिल जाए कि वो हमको ये सब भी बनाए रखने दे और समाधि का आनंद भी दे दे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अब ये दूसरी बात हुई सेवा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उस पर उतनी ही जिम्मेदारी है सेवा की। अब अगला पॉइंट भी लेना चाहिए। एक बात हो गई कामना पूर्ति के सुख का लालच छोड़ना, अर्थात निजी सुख के संकल्पों का त्याग करना। आप कहेंगे कि मेरे साथ तो परिवार लगा है और कहीं बच्चों की पढ़ाई का है, कहीं बेटे बेटी के विवाह का संबंध का है, कहीं मकान का है, कहीं पेंशन का है और कहीं कमाई हुई संपत्ति के इन्वेस्टमेंट का है। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि कैसे पैसा मिले, और जिसके पास आ गया पैसा तो वो बेचैन रहता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अधिक से अधिक ब्याज दिलाने वाला तरीका होना चाहिए कि पैसा लग भी जाए। तो पैसा का न रहना भी भीतर में बेचैनी पैदा कर रहा था, और ज्यादा पैसा आ गया और वो घर में रखा हुआ है कि बैंक में रखा हुआ है, तो अब वो रखा हुआ पैसा भी बेचैन कर रहा है। तो नहीं है तो उसके अभाव में बेचैन, और आ गया तो उसकी वृद्धि के लिए बेचैन। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट खोजते फिरो, कहाँ लगाए तो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी थोड़ा सा बढ़ करके बड़ा हो जाए। तो इससे काम बना नहीं, बढ़ाते बढ़ाते बहुत सा बढ़ा लिया लोगों ने, और बहुत बढ़ा करके फिर बहुत तकलीफ में पड़ गए, परेशान हो गए। तो महाराज जी कहते कि भैया 3/4 का 75/100 करते चले जाओ, मूल्य में कोई फर्क नहीं होगा, अर्थात बेचैनी की बेचैनी जहाँ की तहाँ ज्यों का त्यों है, सो कोई अंतर नहीं आने वाला। अंतर कब आएगा तो कब आएगा कि उसको बढ़ाने की चिंता तो तुम छोड़ दो, बढ़ाने की चिंता तुम छोड़ दो, जितना तुम्हारे पास आया है उसका सदुपयोग आरंभ करो। तो प्रकृति का विधान ऐसा है, परमात्मा का विधान ऐसा है कि वो तो सारी सृष्टि को प्यार करते हैं और सारी सृष्टि का इंतजाम करते हैं। तो मेरे हाथ में उन्होंने 5 रुपए दिए और मैंने उन 5 रुपयों को लेकर के प्रभु के परिवार की सेवा में लगा दिया, तो मेरी उदारता से प्रसन्न होकर के और मेरे संग्रह न करने की बात को देख करके प्रकृति भी सोचती है, परमात्मा भी देते हैं कि ये बच्चा मेरा ऐसा है कि ये अपने लिए न रख करके सबके लिए सोच रहा है। तो इतना बरसा देते हैं, इतना बरसा देते हैं कि जितनी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और एक जन्म की तो कौन कहे, 100 जन्म में उतना कमा नहीं सकते। अब लालच मत बनाना। इसलिए मैंने कहा कि वृद्धि की चिंता छोड़ दो, आ जाए अपने पास तो जल्दी से जल्दी जिसने दिया है उसके परिवार की सेवा में लग जाए, इस बात को सोचना, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आराम लगेगा। कई उदाहरण मुझे अभी 2-4 महीने के भीतर देखने को मिले, उसमें मैंने देखा कि साधक हैं, अपने पास पैसा भी है, लेकिन साधक होने के नाते समाज उनकी सेवा करता है, तो अपने पास जो पैसा था उसको उन्होंने रखे रहना पसंद किया। तो क्या हुआ कि समाज की सहायता ले ले करके उन्होंने शारीरिक काम चला लिया, और अपने पास जो था पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने छोड़ दिया था उसको, अपने ही पास रहने दिया था, न संस्था को दिया, न दूसरों की सेवा में लगाया, न अपने व्यक्तिगत काम में लगाया। तो उनके शरीर के नाश हो जाने के बाद जब मोह के संबंधी पहुंचे वहां और उनका ध्यान गया कि इनके पास कुछ होगा तो जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए, तो उनकी कुटिया में खोजने लग गए लोग, तो कहीं कपड़े में बंधे हुए कुछ मिले, कहीं पासबुक मिला, कहीं FDR मिला, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला। खैर ये सब कोई खास बात नहीं है, वो दिवंगत आत्मा के प्रति मेरी बहुत सद्भावना है, मैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और ऐसा हम लोग मानते हैं कि उनको शांति मिली होगी। लेकिन उसके बाद जब जब मैं कोई कोई सामान कहीं बॉक्स में कहीं अलमारी में बंद कर रही हूँ तो मेरे ध्यान में ये बात आ रही है कि अपने पास है सामान तो खुद भी उसका उपयोग न करो, समाज के लिए भी काम में न लगाओ, किसी संस्था को भी मत दे दो। तो क्या होगा कि अचानक एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा और जब दूसरे लोग उन सामानों को खोलेंगे देखेंगे तो कहेंगे कि देखो इतना संग्रह था और छोड़ करके चले गए। तो बड़ा ही दिक्कत से एक एक बहुत दुखद बात मालूम होती है कि आदमी अधिक से अधिक सामान जुटाने के फेर में पड़ जाता है, बड़ा से बड़ा संग्रह के फेर में पड़ जाता है और उसका उपयोग करने को नहीं सोचता है। तो वस्तु तो दुनिया की है, दुनिया में ही रहेगी और मालिक उसको संभालने वाला है, वो ही संभालेगा। लेकिन अपने को जो मौका मिला था वो जब हम चूक गए तो वीतराग होने का समय कब आएगा तो कोई कह नहीं सकता। ये बड़ी बात संस्था की दृष्टि से भी मैं कहती हूँ, धन अधिक से अधिक आ जाए इस बात पर अगर साधक की दृष्टि चली जाएगी तो संस्था का भी विकास रुक जाएगा, साधक का भी विकास रुक जाएगा। अगर सचमुच तुम्हारे हाथ से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग होने लग जाएगा तो प्रकृति की उदारता का दरवाजा बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो आएगा बेची बेची। और जहाँ जहाँ संग्रह का दोष पैदा होगा, जहाँ जहाँ व्यक्तिगत सुख की बात सोच करके अपने लिए बचा करके रखने की बात आ जाएगी दृष्टि में तो उधर से भी संकीर्णता हो जाएगी। दरवाजा बंद तो नहीं होता है, हर हालत में उधर से मिलता ही रहता है, लेकिन संकीर्णता जरूर आएगी। तो सावधान रहने की बात है। ये दूसरा कदम हो गया, पहला कदम है अपने सुख का संकल्प छोड़ दो, दूसरा कदम है कि जो मिला है उसको सेवा कार्य में लगाने का प्रयास करो, छोटा ही सही, एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की, पांच दस व्यक्ति की। और मैं तो गृहस्थों से कहती हूँ कि भाई हमारे भारतीय संस्कृति में एक का अनेक विस्तार करने की बड़ी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, एक का अनेक, तो एक के अनेक जो आप लोगों ने बनाया है उस आप पारिवारिक कौटुम्बिक रिश्तेदारी क्षेत्र के भीतर ही देखिए कितने लोग आपकी सेवा और आपके सहयोग के अधिकारी हैं, है कि नहीं। तो उनके दुख की ओर दृष्टि न देना और अधिक से अधिक अपने में संभाल करके रखने की चेष्टा करना गृहस्थ धर्म के विरुद्ध है। और अगर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हो तो समाधि का आनंद मिल जाए ये संभव नहीं है, कि ध्यान लग जाए ये संभव नहीं है, कि भजन बन जाए ये संभव नहीं है। अगर अगर मानव हृदय की सद्भावना चाहिए, मानव हृदय की प्रसन्नता चाहिए, अगर मानव हृदय के ताप को शीतल करने में इस जीवन की आहुति लग जाए तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। सेवा का कार्य जो है वो किसी पर एहसान नहीं है कि हम बड़े कार्यकर्ता हैं, हमारे द्वारा बड़ी सेवा बन रही है तो सब लोगों को हमारा एहसान मानना चाहिए, तो घोर पतन की बात हो जाएगी। एहसान नहीं है, मैं तो अपने साथ के काम करने वाले सभी भाई बहनों को कहती हूँ कि अरे भाई तुम अपना सौभाग्य मनाओ, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा मानो कि उन्होंने अपने इतने बड़े बृहद ब्रह्मांड के कार्य में एक छोटी सी जगह पर तुमको कहीं किसी को किया है, बड़ी भारी मशीनरी है, जिसके द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है, उस अनंत शक्तिमान के द्वारा उसने अपने संसार के कार्य में एक छोटी सी कील बनाकर तुमको कहीं फिट कर दिया है, तो तुम प्रभु की कृपा मानो, अपना सौभाग्य मानो और चेष्टा करो कि तुम्हारे पास जो भी बची खुची शक्ति सामर्थ्य है वो उस सेवा कार्य में लग जाए, तो समझो कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेवा की बात हो गई। अब इतनी तैयारी जिसकी हो जाएगी उसको प्रेम का पात्र बनने में कोई कठिनाई नहीं।